भगवत्सार की इस श्रृंखला में आज दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय पर चर्चा है, तो इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे और फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। कृपया दोहराइए। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोने नष्टां स्मृति प्रत्यवरुध्य तुष्टात्। तथा ससर्जेदममोघ दृष्टिर् यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्। तथा ससर्जेदममोघ दृष्टि यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः। एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्। तथा ससर्जेदममोघ दृष्टि यथा व्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार पुरा विश्व के प्राकट्य के पूर्व धारणया ऐसी धारणा द्वारा आत्मयोनि ब्रह्मा जी की नष्टां विनष्ट स्मृतिं स्मृति प्रत्यवरुध्य पुनः चेतना प्राप्त करके तुष्टात् भगवान को प्रसन्न करने के कारण तथा तत्पश्चात ससर्ज सृजन किया इदं यह भौतिक जगत अमोघ दृष्टि ही जिसे स्पष्ट दृष्टि प्राप्त है यथा जिस प्रकार अप्ययात् निर्मित किया प्राप्त पहले की तरह व्यवसाय सुनिश्चित बुद्धि ही बुद्धि। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मा जी की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार हैं। वे भौतिक प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त हैं। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल सकते हैं। जीव की यह विस्मृति, जो ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक पाई जाती है, ऐसी प्रकृति है जिसका शमन भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। यह अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है और यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देता है तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो सकता है तथा साथ ही भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। ज्यों ही ये विस्मृति दूर हो जाती है त्यों ही व्यवसाय बुद्धि आ जाती है, जिसका यहाँ पर और भगवद गीता में भी उल्लेख हुआ है। जीव के इस सुनिश्चित ज्ञान से भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है जिसकी जीव को आवश्यकता होती है। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतः भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। भगवद गीता बल देकर कहती है कि भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनके हाथ, पांव, मुंह तथा आँखें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव कहलाने वाले भगवान के अंश ही उनके सहायक हाथ हैं और वे सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा के निमित्त हैं। बद्ध जीव चाहे वह ब्रह्मा के पद पर ही क्यों न हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होने वाली बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है। ऐसे मिथ्या अहंकार का निराकरण मनुष्य ईश चेतना प्राप्त करके कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निद्रा से निकलकर बाहर आना और भगवान की असली प्रेमा भक्ति को प्राप्त होना, जैसा कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है। ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्त अवस्था में की जाने वाली सेवा का नमूना है और यह तथा कथित परोपकार से भिन्न है, जो त्रुटियों तथा विस्मृतियों से भरा होता है। मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं होती है, अपितु ये मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा होती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं से इस अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। कृपया सब साथ में प्रार्थनाओं को कहें।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिभान्तो दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगे मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमनारुत्कंठयोसुरा।
हरे कृष्ण। दूसरे स्कंद में पहले विभाग की चर्चा है, पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक, जहाँ भक्ति की सर्वोत्कृष्टता का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और उसको समझाने के लिए और ऐसे सारे लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो अलग अलग मार्गों में विश्वास रखते हैं, सुखदेव गोस्वामी प्रथम अध्याय में भगवान के विराट रूप या ब्रह्म पर ध्यान करने की बात कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मवादी भी बैठे हैं, परमात्मावादी भी बैठे हैं और भक्त भी बैठे हैं। तो इसीलिए सीधे भक्ति का गुणगान ना करते हुए सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म पर ध्यान करना, विराट रूप अर्थात या फिर ब्रह्म जो भगवान का निराकार रूप है उस पर ध्यान करने की बात करते हैं। जो कल्पना है, परिकल्पना केवल। तो फिर अब जब उन्होंने पहले अध्याय में ये कह दिया तो हो सकता है परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आए, कोई उदाहरण है, किसी ने आज तक इसके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया, प्राप्त किया। तो फिर दूसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में ब्रह्मा जी का उदाहरण देते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने इसी विराट रूप पर, यही भगवान के जो प्रकृति जिसका वर्णन पिछले श्लोकों में, पिछले अध्याय के श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने किया। तो अब वो कह रहे हैं कि हाँ, ब्रह्मा जी उदाहरण हैं इसके। तो इन्होंने उन पर ध्यान करके भगवान को प्रसन्न किया और फिर इस सृष्टि की रचना की। तो अब ये वो बताने के बाद जब उदाहरण उन्होंने दे दिया, तो ये हो सकता है कि जो लोग ब्रह्म पर या वेदों के द्वारा इस चीज़ों पर पालन करते हैं तो वो पथ से भ्रष्ट हो सकते हैं, मूल उद्देश्य को भूल सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी मूल उद्देश्य भगवान को भूलना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए वो अब आगे दूसरे श्लोक से लेकर करीब सातवें श्लोक तक, ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्म पर या विराट रूप पर ध्यान करके स्वर्ग इत्यादि या कर्म करके स्वर्ग इत्यादि जाने की कामना करते हैं, ऐसे लोगों के पथ का, मार्ग का खंडन करते हैं। तो कर्मकांड जिसको शास्त्रों में कहा जाता है उसका खंडन दूसरे श्लोक से लेकर सातवें श्लोक तक सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इस जगत में आनंद पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो कहते हैं कि वेदों में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, कर्मकांड भी दिया गया है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इनमें फंसता नहीं है। फिर प्रश्न आता है, वेदों में दिया ही क्यों गया है? भगवान भी भगवद गीता में अर्जुन को यही कहते हैं कि अर्जुन, वेदों में बहुत सारे विषय दिए गए हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुना, कि इन वेदों में तीन गुणों में फंसे रहने के लिए कहा गया है, त्रैगुण्य विषया वेदा, लेकिन हे अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुना, तुम्हें इन गुणों के परे जाना है। मतलब जो वेद में कही गई अच्छी अच्छी बातें हैं, आकर्षित करने वाली बातें हैं, इस जगत में आनंद देने की कहने वाली बातें हैं, उनको ध्यान नहीं देना, उनमें नहीं फंसना। तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं कि वेदों में बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उन बातों में फंसता नहीं कि कैसे स्वर्ग चले जाना है, कैसे आनंद ले लेना है, ये यज्ञ करने से ये आनंद मिलेगा, वो पूजा करा देने से ये लाभ होगा, इन सब में नहीं फंसता वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं वो विरक्ति का पथ लेता है। और विरक्ति क्या है इसको बहुत अच्छी तरह से शिवदेव गोस्वामी बताते हैं। तो विरक्ति मार्ग का पालन करने वालों के लिए पूछते हैं कि क्या पृथ्वी पर जगह नहीं है जो घर बनाने की कामना करते हैं? क्या आपके हाथ काफी नहीं है जो आपको सोने के लिए तकिया चाहिए? अर्थात वो बता रहे हैं कि एक वैरागी के लिए क्या आवश्यकता है, क्यों उसको घर चाहिए, क्यों बिस्तर चाहिए, क्यों तकिया चाहिए। वो कहते हैं हमारा हाथ काफी है, बस पृथ्वी पर हाथ रखिए और सो जाइए, क्या तकिए की आवश्यकता है। और खाने की चिंता है आपको, तो क्या पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया? सुखदेव गोस्वामी के समय सभी पेड़ फल दिया करते थे, आजकल तो कलयुग है, फल कम हो गए, पेड़ ही पेड़ दिखते हैं लेकिन पेड़ों में फल नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया जो आप खाने की चिंता कर रहे हो अपने? और फिर कपड़ा, दरअसल इस जगत में व्यक्ति को इन चीज़ों की चिंता ज़्यादा होती है, रोटी कपड़ा और मकान है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते क्या जरूरत है, और खाने की चिंता है फल है, कपड़े की चिंता है, तो वो कहते हैं क्या फेंका हुआ कपड़ा नहीं है? ये वैरागियों के लिए, क्या फेंका हुआ कपड़ा नहीं है, क्या चाहिए वैरागी को? थोड़ा सा एक कपड़ा लें, उसको पहन लें, छोटा सा कपड़ा बस तन को ढकने के लिए, क्या आवश्यकता है बड़ी बहुत मेहनत करके अच्छे अच्छे कपड़े लेने की? दरअसल पहले एक नियम था, जब लोग घर में कोई नया कपड़ा लाते थे तो थोड़ा सा उस कपड़े में से फाड़ कर बाहर फेंक देते थे। ये कोई रीति रिवाज नहीं था, कोई कहना चाहिए अंधविश्वास नहीं था। ये कपड़ा लेकर बाहर फेंका जाता था उन लोगों के लिए जो सन्यासी वैरागी हैं, वो उस कपड़े को लेकर कोपिन बनाए या फिर उसको पहनकर घूमें, तो ऐसे फेंका जाता था। तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उस समय फेंका जाता था, आजकल तो लोग फेंका हुआ भी उठा कर ले जाते हैं, वो अलग बात है। तो वो कह रहे हैं कि क्या कपड़ा नहीं है ऐसा फेंका हुआ कपड़ा, तो वैरागी के लिए क्या आवश्यकता? और फिर ऐसे कहते हुए वो अंत में कहते हैं कि अगर आप ये सब बात नहीं भी विश्वास करते, चलिए आपको खाने के लिए रहने के लिए इत्यादि इत्यादि हो गया, क्या भगवान नहीं है? भगवान रक्षा करने के लिए नहीं है? तो क्या बतला रहे हैं इन प्रश्नों से, ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं शिवदेव गोस्वामी, अचानक क्यों प्रश्न पूछने लगे? प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, प्रश्नों के द्वारा ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कर्म कांड पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास भगवान से उठ जाता, क्योंकि वो उन चीजों में, उन यज्ञों में, उन रीति रिवाजों में, उन पूजाओं में विश्वास करके, कुछ पाने के लिए कामना करके भगवान से विश्वास उठा देते हैं। जिसे भगवान पर विश्वास है उसको और अन्य कार्य करने की क्या आवश्यकता, क्या यज्ञ की आवश्यकता है, क्यों किसी पूजा की आवश्यकता है, क्यों किसी देवता को शांत करने की आवश्यकता है, क्यों कोई नाग सर्प इत्यादि का दोष निकालने की आवश्यकता है? भगवान पर विश्वास है, लेकिन विश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास भगवान पर नहीं है, इसलिए हमें कार्यों में लगते हैं। और इसीलिए इस जगत की रोटी कपड़ा मकान पैसा इत्यादि पाने के लिए हम कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई दान धर्म करते हैं। लोग दान भी केवल इसलिए देते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं देते। वो दान देते हैं कि आज मैं 100 रुपया दे रहा हूं तो कम से कम बिजनेस में मेरा 1000 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, जैसे पब्लिसिटी की जाती है ना एडवर्टाइजमेंट किसी बिजनेस का, तो बड़ा बिजनेस होता है वो लोग उसमें 5% 10% 15% बिजनेस के लिए रखते हैं। तो ऐसे ही लोग डोनेशन देते हैं कि मैं आज इतना दे रहा हूं तो कम से कम भगवान मेरा इतना बढ़ा दें बस। तो ये भी कामनाएं हैं। तो इस सब को शिवदेव गोस्वामी कहते हैं इसका कोई लाभ नहीं। और फिर जब ये कर्मकांड को उन्होंने खंडन कर दिया तो अब भगवान का वर्णन करते हैं। तो 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक परमात्मा का वर्णन करते हैं, कैसे दिखते हैं परमात्मा, कैसा रूप है उनका। देखिए पिछले अध्याय में उन्होंने जो ध्यान पद्धति दी वो विराट रूप या निराकार पे थी, ब्रह्म पे थी। अब वो योगियों की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात जो वहां पर योगी बैठे हैं उनको भी संतुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन अंत में वो कहेंगे भक्ति, मगर फिर भी जो लोग बैठे हैं ब्रह्मवादी या परमात्मावादी, उनको संतुष्ट करने के लिए अब परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। तो आठवें श्लोक से लेकर ग्यारहवें श्लोक तक वो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं कि परमात्मा कैसे हैं, भगवान का रूप कैसा है, चतुर्भुज रूप है, बहुत सुंदर वर्ण है, माला कौस्तुभ मणि पहनी हुई है और फिर गले में फूलों की माला है और ऐसी माला जो कभी मुरझाती नहीं है, ऐसे फूलों की माला पहने हुए हैं भगवान। तो ये सारा वर्णन उन्होंने किया, बहुत सुंदर वर्णन कि कैसे दिखते हैं भगवान, और कहते हैं इस रूप पर ध्यान करना चाहिए। तो देखिए पहले उन्होंने कहा कि विराट रूप पे कर लीजिए, कोई भगवान उसमें कोई भगवान की सुंदरता का वर्णन नहीं किया, पेड़ और पर्वत इत्यादि। लेकिन फिर वर्णन कर रहे हैं कि नहीं, अब इस पर ध्यान करना चाहिए भगवान के सुंदर रूप पर, तो जिसे योगी करते हैं। तो फिर ऐसे वो आगे योगियों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो जो पहला विभाग है जहाँ सुखदेव गोस्वामी कर्मकांड का वर्णन कर रहे हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इसके द्वारा हमें समझा रहे हैं कि कैसे जीव को भगवान की विस्मृति होती है। क्योंकि हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, विश्वास उड़ जाता है, तो इन चीज़ों को बतलाकर, अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि हमें अपना शरीर चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है, कम से कम, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया पृथ्वी है, हाथ है, पेड़ हैं खाने के लिए, तो क्यों चिंता करना है, नदियां हैं पानी के लिए, क्या नदियों में पानी सूख गया है, तो उस समय नहीं सूखता था नदियों में पानी, आजकल तो डैम बना कर नदियों को सुखा देते हैं, तो नदियों में क्या पानी। जो ये सब कह के वो क्या बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण पर विश्वास रखिए, जो हमारा उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, उसको भूलिए नहीं। हाँ आप परिवार चलाइए, घर चलाइए, जीवन चलाइए, लेकिन जितनी कम से कम आवश्यकता है उतने का ध्यान कीजिए, बाकी समय सब भगवान को दीजिए। अर्थात कि व्यक्ति अपना उतना ही कार्य करे जितना उसको परिवार के लिए आवश्यक है, परिवार चलाने के लिए, ये शरीर चलाने के लिए जितना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करे, इससे भगवान से हम दूर हो जाते हैं। उपदेशामृत में भी श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति अनावश्यक प्रयास करते हैं कुछ चीज़ों को पाने के लिए, लालच, जो अनावश्यक चीज़ों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास, तो प्रयास से भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए प्रयास हमारा कृष्ण को पाने के लिए होना चाहिए, प्रयास भौतिक चीज़ों को पाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को समझा रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य है श्री कृष्ण, उसको मत भूलिए। आप अपने अपने जीवन में, अपने कार्यों में इतना मत फंस जाइए कि आप जीवन के लक्ष्य को भूल गए। जिस चीज़ के लिए भगवान ने ये जीवन दिया था, जिस चीज़ के लिए आपको मनुष्य जीवन मिला है, उसको भूलिए मत। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई कार्य करते हैं, आप अपने किसी कार्य करने वाले को, किसी व्यक्ति को आप कुछ धन देकर किसी दूसरे शहर में भेजते हैं कि जाओ वहाँ से ये चीज़ ले आओ, वो व्यक्ति वो धन लेकर जाता है लेकिन वहाँ पर कुछ और ही कर देता है, उस धन को उड़ा देता है खाने पीने में या और कार्यों में, लेकिन जिस चीज़ के लिए धन दिया उसका उपयोग नहीं करता, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, चोर, अपराधी है वो, क्योंकि आपने उसको धन दिया कि जाकर ये चीज़ खरीद लाओ, वो धन लेकर गया और उसने धन को आनंद लेने में, शराब पीने में, मांस खाने में इत्यादि में उड़ा दिया और फिर कुछ नहीं, तो उसको अपराधी कहते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, भगवान ने धन दिया है, ये बहुत बड़ा धन है हमारे पास मनुष्य जीवन, तो भगवान ने ये धन दिया किस लिए कि जाओ इस धन से फिर से मेरी प्राप्ति करो, मुझे जो भूल गए हो उसको पुनः, उस चेतना को पुनः जागृत करो, इसीलिए ये धन दिया उन्होंने, ये मनुष्य जीवन। लेकिन जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान को प्राप्त करने के लक्ष्य को भूल जाता है, तो वो फिर अपराधी है, चोर है। ऐसा हर व्यक्ति अपराधी है। और ये पद्म पुराण में कहा गया है। पद्म पुराण कहता है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो तो सुर है, अन्य जो भी है वो असुर है। तो सुनने में बड़ा कठोर लगता है, अरे ऐसे कैसे, इतने बाकी लोग के सारे असुर हैं, इतने सुंदर दिखते हैं, इतने अच्छे दिखते हैं, इतने धनवान हैं, असुर कैसे हो गए? सब असुर हैं अगर भगवान की भक्ति नहीं करते। क्योंकि असुर का स्वभाव क्या है? भक्ति नहीं करना भगवान की, भौतिक भोगों की आशा करना। जैसे हिरण्यकश्यपु तपस्या की उसने, लेकिन इच्छा क्या थी? भौतिक भोग, मरना नहीं चाहता हूँ, सारे जगत पर राज्य करना चाहता हूँ। असुर कहलाया। रावण ब्राह्मण पिता का पुत्र था, लेकिन क्या तपस्या की उसने? मरना नहीं चाहता हूँ, न त्रिलोकेश्वर बनना चाहता हूँ, इसीलिए असुर कहलाया। तो बड़ा सरल है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो असुर है, स्पष्ट। तो भक्ति तो करनी ही चाहिए। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ ये बतला रहे हैं कि ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना है हमें। और फिर भगवान को भूलना नहीं है, उद्देश्य को। तो हमेशा अपने कार्य करते हुए, जीवन बिताते हुए ये जान लीजिए, ये धन, ये जीवन, मनुष्य जीवन भगवान ने एक ही उद्देश्य के लिए दिया है, भगवत प्राप्ति, बस। अगर उस उद्देश्य को भूल गए तो हम उस व्यक्ति की तरह हैं जो अपने मालिक से धन लेकर किसी दूसरे शहर में आया है और उस धन का दुरुपयोग करके चोर या अपराधी बन रहा है। तो ऐसा वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने फिर किया। और फिर 12वें श्लोक से आगे दो श्लोकों में, तीन श्लोकों में वो दो तरह के योगियों का वर्णन करते हैं। जैसे अब उन्होंने परमात्मा का वर्णन कर दिया, तो परमात्मा पर ध्यान कौन करते हैं? योगी। तो दो तरह के योगियों का वर्णन किया। एक जो अनासक्त है, जिनको इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं, कोई इच्छा नहीं है जिनकी। और दूसरे जो योगी हैं लेकिन फिर भी इच्छा है हृदय में। तो ऐसे दो योगियों का उन्होंने वर्णन किया, दो प्रकार के। और फिर आगे के श्लोकों में उन्होंने मार्ग का वर्णन किया कि जो ऐसा योगी है जो अनासक्त है वो कहाँ जाता है और कैसे जाता है, उसकी गति क्या है और कौन सा मार्ग लेता है। और फिर उन्होंने वर्णन किया कि अगर कोई व्यक्ति आसक्त है, कुछ उसकी अभी इच्छाएं बाकी हैं, तो उसका क्या होता है, वो योगी कहाँ जाता है, कैसे मुक्ति प्राप्त करता है, इसको वर्णन किया उन्होंने। तो 15वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक उन्होंने ऐसे योगी का वर्णन किया जो अनासक्त है, जो भगवान की प्राप्ति या मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन 22वें श्लोक से लेकर फिर उन्होंने 32वें श्लोक तक वर्णन किया ऐसे योगी का जो अभी उसकी इच्छा नहीं गई है, इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। क्रम मुक्ति मतलब क्रम से धीरे 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 मुक्ति को प्राप्त करना। और फिर अंतिम श्लोकों में 33वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक सुखदेव गोस्वामी भक्ति की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, अर्थात इन मार्गों को उनका खंडन कर देते हैं कि ये लाभदायक नहीं। बताया उन्होंने, तो पहले ब्रह्म पर ध्यान करना बताया, परमात्मा पर ध्यान करना बताया, लेकिन कहा उससे भी श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति करना। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि हमें ब्रह्म पर ध्यान करना चाहिए, हमें परमात्मा पर ध्यान करना है। ये तो उन्होंने उन लोगों के लिए बताया जो बैठे हुए थे, लेकिन अब वो बता रहे हैं उन लोगों को कि आप ये सोचते हो कि श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन ये श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। क्योंकि कई लोगों ने ये मार्ग बताया था परीक्षित महाराज को, जो परीक्षित महाराज पूछ रहे थे कि आप ब्रह्म पर ध्यान कीजिए, आप ये कीजिए, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे ये सब ठीक नहीं, सही मार्ग है भक्ति। तो इसीलिए दो प्रकार के जो योगियों का वर्णन करते हैं, तो एक योगी होते हैं जो अनासक्त, वो परमात्मा पर ध्यान करते हैं। दूसरे हैं जो आसक्त हैं, वो विराट रूप पर ध्यान करके फिर इस जगत में धीरे 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 ऊपर बढ़ते हैं। तो जो परमात्मा पर ध्यान करते हैं, परमात्मा के सुंदर स्वरूप पर, जो अनासक्त हैं, वो परमात्मा पर ध्यान करके फिर ब्रह्म ज्योति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रभुपाद एक स्थान पर समझाते हैं कि ऐसे योगी फिर भक्त बनते हैं और फिर भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, या फिर जो भगवान के स्वरूप पर, जो परमात्मा स्वरूप पर ध्यान करते हैं, धीरे 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 भगवान के भक्ति करते हुए भगवान के लोक में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि भगवान के स्वरूप पर ध्यान कर रहे हैं। लेकिन कुछ योगी जो अभी भी आसक्त हैं, वो विराट रूप पर ध्यान करते हैं, उनके लिए क्रम मुक्ति बताई। क्रम मुक्ति मतलब उनकी इच्छा होती है ऊंचे लोकों में जाने की, तो ऐसे योगी अपने स्थूल शरीर को त्याग देते हैं, सूक्ष्म शरीर में ऊंचे लोकों में जाते हैं, महर लोक में जाते हैं, सत्य लोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में जहाँ कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, उस लोक में जाते हैं। ये सारा वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। और फिर वहाँ से भौतिक प्रकृति के जो तत्व हैं उनको भी पार करते हुए, फिर धीरे 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 सारे भौतिक आवरणों को पार करते हुए फिर वो भगवान के धाम में या प्रवेश करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मार्ग बहुत लंबा है, क्योंकि क्रम भक्ति, क्रम मुक्ति मतलब धीरे धीरे धीरे, पहले अपने बहुत कठिन है, बड़ी योग विद्या का पालन करना पड़ता है, उसके बाद अनासक्त होना पड़ता है, उसके बाद अलग अलग लोकों में जाते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं इससे अच्छा क्या है, तब वो अंतिम श्लोकों में साधना भक्ति का वर्णन वो करते हैं। और वो कहते हैं कि ये 32वें श्लोक से कहते हैं कि परीक्षित महाराज, आपने जो पूछा था मैंने आपको बता दिया योगियों के विषय में, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि जो लोग भौतिक जगत में भटक रहे हैं उनके लिए एक ही शुभ मार्ग है, उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। तो देखिए ये सब बता दिया सुखदेव गोस्वामी ने उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो योगी बैठे थे, तो वो सब खुश हो गए, हाँ हाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे यही मार्ग है। लेकिन अंत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं एक बात जान लो, भगवान की प्रत्यक्ष भक्ति इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब ये जो सब है ये ठीक है, मार्ग है, लेकिन अंततः व्यक्ति को प्रत्यक्ष भक्ति, प्रत्यक्ष मतलब सीधे सेवा भगवान की, उसमें आना ही पड़ता है। और वो बताते हैं कि ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी ने बड़े ध्यान करके 3 बार वेदों का पूरा अध्ययन करके फिर इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि ये सब चीज़ों में कोई लाभ नहीं है, केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो अंतिम श्लोकों में वो भगवान की भक्ति का वर्णन करते हैं कि भगवान की भक्ति, और फिर से वो उस शब्दों को दोहराते हैं जो उन्होंने प्रारंभ में कहा था। कल हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही, और फिर से वो कहते हैं तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। फिर उसी बात को कह रहे हैं। तो पहले उन्होंने सबसे पहले यही कह दिया, फिर लोगों को संतुष्ट करने के लिए समझाया, और अब फिर उसी बात को कह रहे हैं कि श्रेष्ठ चीज यही है कि हे राजन, ये आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र, सर्वत्र यानी सब जगह और सदैव हर समय पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तो अब उन्होंने जो पथ मार्ग बताए उनका खंडन कर रहे हैं, खुद ही बताए थे, अब खुद ही कह रहे कि अच्छा मार्ग है भगवान की भक्ति करें। और अंत में श्लोक, इस अध्याय के अंत में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं, और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो देखिए, जब उन्होंने कहा कि भक्ति करनी है, स्मरण भगवान का करना है, तो मार्ग क्या है, कृष्ण कथा सुनना। कहते जो लोग रोज कृष्ण कथा सुनते हैं उन्हें शिव भगवान के धाम में चले जाएंगे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो कृष्ण कथा को सुनने वाले हैं। तो इसके द्वारा वो ये समझा रहे हैं कि बहुत सारे मार्ग हैं मुक्ति के, मुक्ति प्राप्त करने के, जैसे उन्होंने वर्णन किया योगियों के द्वारा और पहले विराट रूप पर ध्यान करके धीरे धीरे अलग अलग लोकों में होते हुए जाते जाने द्वारा, तो मुक्ति के बहुत मार्ग हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मार्ग, सर्वश्रेष्ठ मार्ग और आत्यंतिकी मार्ग, आत्यंतिकी मतलब उससे परे कुछ नहीं है, वो भक्ति है। और भक्ति कैसे प्रारंभ होती है? साधना भक्ति, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चताभयम्। सुनना चाहिए, ये जो श्रवण कीर्तन है ये साधना भक्ति के अंग हैं। जब तक व्यक्ति साधना भक्ति नहीं करता तब तक भक्ति के ऊंचे स्तरों पर नहीं जा सकता। कभी कभी लोग सीधे कुछ और भक्ति के ऊंचे स्तरों पर अपने स्तर को छोड़कर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। साधना भक्ति के द्वारा, श्रवण और कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा जब तक हृदय को शुद्ध नहीं किया जा सके हम भगवान को नहीं देख सकते, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी को सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि साधना भक्ति, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। दूसरी बार इसी चीज़ को, जब भी शास्त्रों में किसी चीज़ को दो बार दोहराया जाता है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इसी शब्द को उन्होंने अभी थोड़े समय पहले पिछले अध्याय में दोहराया था, अब फिर से दोहरा रहा है। क्या करना चाहिए? बस श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, स्मर्तव्य मतलब स्मरण करना चाहिए। तो इसके द्वारा साधना भक्ति के मार्ग को सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। तो हम सब के लिए मार्ग है कि अगर हमें अपनी भूली हुई विस्मृति, जिसका वर्णन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में करते हैं श्लोक के, कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक को विस्मृति है भगवान की, तो उस विस्मृति को अगर हमें पुनः प्राप्त करना है, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, कीर्ति का गुणगान करना चाहिए। तो अब इतना कहकर सुखदेव गोस्वामी अब अगले अध्याय में शुद्ध भक्ति का वर्णन करने वाले हैं। तो पहले अध्याय में उन्होंने वर्णन किया कि भगवान के साक्षात्कार का पहला सीढ़ी क्या है, फिर उन्होंने वर्णन किया कि हृदय में जो भगवान हैं दूसरे अध्याय में, और अब शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्तिमय सेवा, इसका वर्णन या शुद्ध भक्ति का वर्णन अगले अध्याय में वो करेंगे।